नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की दो तिहाई कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आज की बातचीत से ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद से 120 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अब कोई विकल्प नहीं बल्कि सुशासन का एक अनिवार्य स्तंभ है। उन्होंने एआई के उपयोग के महत्व पर बल दिया। जयपुर में आज 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के समापन सत्र में श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सोच में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करना बंद कर दिया है। धारचूला के उपमंडल मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने बताया कि वर्तमान मौसम की स्थिति का आकलन करने के बाद प्रशासन परमिट जारी करने की प्रक्रिया पर फिर से विचार करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।